بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ٹاپک ہے دعوا مشن ان دی 21st century. 21st century میں دعوت اللہ کا مشن. دعوت اللہ کیا ہے؟ کسی بھی چیز میں دیکھیں سب سے پہلے جاننا پڑتا ہے کہ وہ کیا نہیں ہے. جیسے لا الہ الا اللہ میں سب سے آتا ہے کہ کون الہ نہیں ہے، پھر آتا ہے کہ الہ کون ہے. یعنی سلبی پہلو پہلے آتا ہے، ایجابی پہلو بعد کو آتا ہے. یہ بہت ضروری ہے جاننا. تو آپ کو جاننا چاہیے کہ دعوت کیا نہیں ہے، تب آپ جانیں گے دعوت کیا ہے. دیکھیے، دعوت اللہ ایک لفظ میں خدا کے تخلیقی منصوبہ سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، ٹو میک پیپل اویئر آف دا کریشن پلان آف گاڈ. یہ ہے دعویٰ. اللہ نے پیدا کیا انسان کو تو اس کا ایک منصوبہ تھا، ایک پلان. ڈیتھ کیوں ہے، موت کیوں ہے، زندگی کیوں ہے، موت سے پہلے کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، ان سب چیزوں کو جاننا. اسی کو میں کہتا ہوں کہ ٹو میک پیپل اویئر آف دا کریشن پلان آف گاڈ. یہی دعویٰ اللہ ہے. دعوت نہ تو مسلمان کے پرائڈ کو فیڈ کرنا ہے، نہ اسلام کی سپریمیسی کو اسٹیبلش کرنا ہے. اس طرح دعوت مل لیول پہ نہیں ہے. خالصتاً اللہ کا کام یہ ہے. یہ بہت ضروری ہے اس کو جاننا. وہ آدمی کیا کرتا ہے، دوسرے کام کرتا ہے اور اس کو سمجھ لیتا ہے کہ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں. تو اس طرح کے کام پر اللہ کے ہاں دعوت کا کریڈٹ ملنے والا نہیں ہے. ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں، کہتے دنوں سے آپ دعوت کا مشن چلا رہے ہیں، کہتے آدمیوں کو آپ نے اسلام میں داخل کیا. یہ غلط کرائٹیرین سے ہمارے مشن کو جج کرنا ہے. ہمارا مشن ہرگز کنورژن نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. ہمارا مشن جو ہے انذار ہے. قرآن میں دیکھی ہے کہ قم یا المدثر قم فانذر، انذار کرو. قرآن کے بارے میں ہے کہ اتارا گیا بطور نذیر کے، لیکن للعالمین نذیرا. انذار کا مطلب ہے وارننگ. تو قرآن جو ہے بک آف وارننگ ہے، بک آف کنورژن نہیں ہے. یاد دیکھیے، کنورژن دوسرے کا چوائس، ہمارا گول نہیں ہے، ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. وہ ہمارا ٹارگٹ ہے ابلاغ، انذار، وارننگ، ٹو میک پیپل اویئر آف دا ریئلٹی. اس کے بعد دوسرے کا چوائس. ہر آدمی کو اللہ نے دیا ہے آزادی، تو ہماری حد خط پہ آتی ہے جہاں ہم نے پہنچا دیا پاس. اس کے بعد مدعو کی حد شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں क्या फैसला करें। तो कन्वर्जन जो है वो दूसरे का चॉइस है, दूसरे का चॉइस हमारा टारगेट नहीं बढ़ सकता। देखिए एक बात को समझिए कि पिछले तमाम जमानों में रसूलुल्लाह से पहले दाऊद का काम पैगंबर के जरिए किया जाता, सुबह अरसलना रसलना तत्रा, यानी एक के बाद एक नबी आते रहे ताकि लोगों को वार्निंग दें, इंतजार करें। लेकिन जब रसूलुल्लाह पर नबूवत खत्म हो गई तो उसके बाद कौन करे ये काम, इसके लिए उम्मत मुहम्मदी का पर जिम्मेदारी डाली गई। लिया पूरे रसूल और शहीद को बतकून सौदा और अंदाज, तो जो काम खत्म नबूवत से पहले नबी क्या करते थे दावत अल्लाह, वो काम अब उम्मत मुहम्मदी को अंजाम देना। हर फर्द पर यह फर्ज है, ये फर्ज अल कफाय नहीं है, ये फर्ज आयन है। हर फर्द को जिस तरह नमाज रोजा फर्ज है उस तरह दावत भी फर्ज है, याद रखिए। इसीलिए उम्मत मुहम्मदी के लिए डबल इनाम है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी दो है, खुद अमल करना, दूसरों को बताना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 23 साल तक दावत का मिशन अंजाम दिया। 632 ईस्वी में आपकी डेथ हुई मदीना में, इससे तकरीबन 2 महीना पहले हजरतुल विदा हुआ, यानी आखिरी मुलाकात रसूलुल्लाह की आली इमान से। उस मौके पर 1,00,000 से ज्यादा आदमी इकट्ठा थे अरफात के मैदान, जिनको हम सहाबा कहते हैं। आपने उनको एड्रेस किया, उसमें आपने कई बातें बताई। एक बात यह थी कि इन्नल्लाह बासनी काफतल लिन्नास फद्दू अन्नी, अल्लाह ने मुझे भेजा है सारे इंसानों के लिए, से अरब के लिए, तो तुम मेरे तरफ से लोगों तक पैगाम पहुंचा दो। इस तरह से हजरतुल वदा के बाद रसूलुल्लाह के वफात की डेथ के बाद एक प्रोसेस ऑफ दावा शुरू हुआ, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहा। वो रसूलुल्लाह के पास सहाबा, सहाबा के बाद ताबीन, ताबीन के बाद तबा ताबीन, और फिर चलते चलते हम तक पहुंचा है वो। अब देखिए कि मिशन जो था वो था सारे आलम को पहुंचाना। सारे आलम को पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, ज़राए चाहिए, तो कमी मौजूद नहीं थे ज़राए। गोए पर और ऊंट पर सफर करके आप सारे दुनिया में नहीं पहुंच सकते। तो दावत को ग्लोबल लेवल पर अंजाम देने के लिए ग्लोबल कम्युनिकेशन दरकार था। यह पहले बार मुमकिन नहीं था, आज मुमकिन हुआ। यहां मैं एक बहुत ही खास बात अर्ज करना चाहता हूं। देखिए रसूलुल्लाह को जिसको हम कहते हैं मेराज, कुरान में इसकी लफ्ज इसरा है, इसरा हुआ, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही لرم بل المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اس کو اسرا کہا جاتا ہے, اسرا میں لے جانا, یہاں سے وہاں لے جانا. تو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا, یعنی مکہ سے یروشلم لے گیا. اس کا مقصد کیا گیا ہے کہ لے لو یہ بن آیات, تاکہ ہم دکھائیں پیغمبر کو نشانیاں, اپنی نشانیاں. اب سوال ہے کہ وہ نشانیاں کیا ہیں, کون سی نشانی ہے جس کو دکھانے کے لیے رسول اللہ کو لے جائے گا یروشلم. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر زیتون اور انجیر کے درخت ہیں اور کچھ بلڈنگیں ہیں اس کو دکھانے کے لیے, یہ بالکل ایرریلیونٹ بات ہے. کوئی بڑی بات ہونی چاہیے, اتنا بڑا واقعہ کہ کمیونیکیشن سے پہلے, ایویشن سے پہلے ایک پیغمبر کو مسٹیریسلی یا نیچرل طور پر مکہ سے یروشلم لیا جاتا ہے, جو تقریباً 1500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو کوئی بڑی بات ہونی چاہیے. میں 3 بار گیا ہوں یروشلم اور فلسطین, وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو دکھانے کے لیے اتنا بڑا واقعہ ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر نشانی سے مراد کیا ہے, سمجھیے نشانی سے مراد ہے واقعہ اسرا. نشانی مراد واقعہ اسرا ہے, نشانی مراد یروشلم نہیں ہے. لے جانا یہ ہے مراد. اسرا خود نشانی تھی, اس کو بتانے کے لیے یہ واقعہ ہوا. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ فیوچر میں ایک دور آئے گا جس کو لوگ کہیں گے ایج آف کمیونیکیشن. ایج آف کمیونیکیشن یہ پیشگی طور پر آپ کو بتایا گیا, پریڈکشن تھا, یہ پریڈکشن. یعنی اسلام کا یہ جو دین ہے, یہ آخری دین ہے, وہ اسی دور میں نہیں رہے گا جس دور میں کہ آج تم ہو, کہ خچر پر, گھوڑے پر, اونٹ پر سفر کرنا پڑتا ہے, دور کا سفر ممکن نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک فرق تھا, دین وہ بھیجا گیا جو ساری دنیا کو پہنچانا تھا, لیکن ذرائع تھے نہیں, عالمی ذرائع موجود نہیں تھے کہ بتایا پیشگی طور رسول اللہ کو کہ وہ زمانہ آنے والا ہے, یعنی ایج آف کمیونیکیشن آنے والا ہے جب یہ ممکن ہو جائے گا. یہاں پر ایک بات سمجھنے کے لیے ایک بات دھیان میں رکھیے کہ قرآن میں اور حدیث میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نارمل طریقے سے ہیں, یعنی اسی وقت مطلوب تھے وہ جب کہ بتائی گئی. مثلا الحمدللہ رب العالمین جب یاد نازل ہوئی اسی وقت مطلوب کی تھی کہ اللہ کی حمد کرو, آخر سلام اللہ کی لیے نماز پڑھو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پریڈکشن کے لیول میں ہیں, لینگویج آف پریڈکشن, پیشن گوئی کی زبان کہ آگے ہوگا. مطلب دیکھیے قرآن میں ہے فرعون کے بارے میں کہ جب فرعون کو, فرعون غرق ہو رہا تھا, اس وقت اللہ نے فرمایا الیوم ننجیک بے بدنک لتكون لمن خلفك آية. ہم تمہارے باڈی کو پرزرو رکھیں گے, بچا کر رکھیں گے تاکہ وہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو. اب آپ دیکھیے پیٹیشن تھا, پیٹیشن آج تم ڈوب کر ختم ہو رہے ہو لیکن تمہارا باڈی پھر بھی پرزرو رہے گا. اور یہ جانتے ہیں 19th century کے آخر میں یہ چیز ڈسکور ہوئی, مس کے آرام سے باڈی نکالا گیا. اس کو میں لکھا اپنی کتابوں میں, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ جو تھی لینگویج آف پریڈکشن تھی, یعنی فیوچر پہ ہونے والے واقعہ. ایسی بہت سی باتیں ہیں قرآن میں اور حدیث میں کہ وہ 7th century میں, آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ظہور جو ہوا وہ 7th century کے فرسٹ ہاف میں ہوا, تو اس وقت کہی گئی, لیکن وہ صرف پریڈکشن تھی, پیشی کی خبر تھی, وہ سینکڑوں سال کے بعد ظاہر ہونے والی تھی. ایسی اسرا میں ایک پریڈکشن تھا, اسرا سوار اسرا, یہ پریڈکشن تھا. یعنی وہ دور آنے والا ہے جب کوئی دنیا میں ایج آف کمیونیکیشن آئے, یہ پاسبل ہو جائے کہ یہ پیغام جو مطلوب ہے گلوبل لیول پر پہنچایا جائے, تو ایسے ذرائع ہم تم کو دے دیں گے کہ تم پہنچا سکو. یہ مطلب تھا اس کا. اب یہ کتنی بڑی بات ہے, اس کا مطلب سوچیے گا کیا اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے دعوت کا پروسیس شروع کیا محلی سطح پر, مقامی سطح پر, کیونکہ اس وقت گلوبل کمیونیکیشن موجود نہیں تھا. اور پھر وہ نسل در نسل چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا, لیکن پھر بھی عالم تک نہ پہنچا. اس وقت دیکھیے ایشیا میں پہنچا, افریقہ میں پہنچا, بہت پارشل سینس میں یورپ میں پہنچا. آسٹریلیا اور امریکہ ان نون تھا, لواسٹریس پہنچے ہی نہیں. میں یاد دلاؤں گا ایک واقعہ کہ ایک تابعی تھے, یعنی اخوائے بن نافع تابعی صحابہ کے بعد, تو وہ عرب سے نکلے ایک دستہ لے کر افریقہ کے ملکوں کو تک کرتے ہوئے پہنچ گئے وہاں اٹلانٹک کے ساحل پر. اب جانتے ہیں اٹلانٹک جو ہے اس کے ایک طرف افریقہ ہے ایک طرف امریکہ ہے, اٹلانٹک بیچ میں ہے. تو افریقہ کے ملکوں کو طے کرتے ہوئے وہ اٹلانٹک ساحل پہ پہنچ گئے, وہاں پر گھوڑا کھڑا کیا انہوں نے. وہ اسپیڈ جو اسلام بھری تھی کہ پہنچاؤ ساری دنیا تک, پہنچاؤ پہنچاؤ پہنچاؤ, اس اسپرٹ کو لے کر. یہ نہ تو پولیٹیکل کوئی آپریشن تھا, نہ حکومت بنانا تھا, نہ مال لوٹنا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. جو لوگ سازم تھے وہ کچھ بھی نہیں جانتے, اسلام کی ویسٹی بھی نہیں جانتے, جو سمجھے کہ اس کا مقصد ہے اسلام حکومت کام کرنا. نہیں, اس کا تھا مقصد ٹو میک پیپل اویئر آف دا کرشن پلان آف گاڈ. بس سنگل نشانہ تھا. تو عقبہ بن نافع نے اٹلانٹک کے ساحل پر گھوڑا کھڑا کیا, وہ اسٹریٹ بولی, وہ اسپیچ جو اس میں بھری تھی بولی ان کی زبان سے. انہوں نے کیا کہا, اللہم لو عالم انا ورا حضر برد ورا حضر بحر برد, اللہم لو عالم ان ورا حضر بحر برد لخست ہو حتی لا یبد احد دونک. اے اللہ, اگر میں جانتا اس سمندر کو اس بار بھی کچھ دنیا ہے جہاں لوگ رہتے ہیں, میں خوش پڑتا. समुद्र में खुद पड़ता। यहां तक कि सारी दुनिया को दाव पहुंच जाए, सारी दुनिया अपने रब से बाखबर हो जाए। ये स्पिरिट थी उन लोगों की। इस स्पिरिट लेकर उन्हें हर तरफ फैल गए, लेकिन फिर भी ग्लोबल दाव वर्क नहीं हो सका, क्योंकि ग्लोबल कम्युनिकेशन नहीं था। अब जाकर यह वाकया हुआ है कि एज ऑफ कम्युनिकेशन आ गया है। इसराइल के नाम से जो पिटिशन किया गया था, अब वो वाकया बना है, वो एक्चुलाइज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको सोचिए। इस मतलब दोबारा अरफात की आवाज गूंज रही आज सुनने वालों के लिए। अरफात की आवाज जो गूंजी थी उस वक्त कि अरे मेरे फॉलोअर्स, तुम मेरे पैगाम को सारे आलम तक पहुंचा दो। उन्हें पहुंचा, लेकिन उनकी हद आ गई, अटलांटिक को उनकी हद आ गई। अब दोबारा जब एज ऑफ कम्युनिकेशन आ गया है और हद खत्म हो गई, अब हद टूट गई है, अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, तो फिर अरफात की आवाज गूंज रही है, अब मेरे मानने वालों, मैंने हद तोड़ दी। अब फुसके और कली का फर्क नहीं बाकी था। अब तो सारी दुनिया पहुंचा सकते हो इस पैगाम को मॉडर्न कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करके। तो उठो, ये काम करो। ये कितनी बड़ी बात है, सादा बात नहीं है। अब आप बोल के जो साहबा जो थे, एक ही मिशन को लेकर उठे वो दावा मिशन, लेकिन उनकी लिमिट आ गई। अब इस जमाने में वो लिमिट टूट गई, एज ऑफ कम्युनिकेशन आ गया। अब मौका आ गया कि हम उसके उनके मिशन को पूरा करें। उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। इट इज अ थ्रिलिंग आइडिया दैट वी आर डेस्टिनेड टू फिनिश द अनफिनिश्ड विजन ऑफ सहाबा। कैसी अजीब बात है ये सोचना। इट इज अ थ्रिलिंग आइडिया दैट वी आर डेस्टिनेड टू फिनिश द अनफिनिश्ड मिशन ऑफ सहाबा। यहां आप चिल्ला रहे हैं एज ऑफ कम्युनिकेशन ऐलान कर रहा है। उस वक्त जो आवाज गूंजी थी मैदान अरफात में, वो आवाज दोबारा गूंज रही है, दोबारा गूंज रही है हर तरफ सुनने वालों के लिए कि एज ऑफ इसरा आ गया। एज ऑफ इसरा जो उसी का दूसरा नाम है एज ऑफ कम्युनिकेशन, जिस चीज को कुरान में कहा गया था इसरा, उसी का नाम है आज एज ऑफ कम्युनिकेशन। वो दौर आ गया, वो दौर चीफ चीफ के आपको आवाज दे रहा है। तुम्हारे पैगंबर ने तुम्हारा जो जिस बशर को तुम्हारे हवाले किया था, और साहबा और ताबीन और तबा ताबीन जिस मिशन लेकर चलते रहे, लेकिन उनकी लिमिट आ गई, क्योंकि एज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था उस जमाने में। अब वो लिमिट टूट गई, अब पूरी दुनिया एक विलेज बन गई। प्रिंट मीडिया, पेट में जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है इसको हॉस्पिटल बना दिया कि वो आपका जो भाई इसको कुरान का इत्खाल कलमा नहीं कुरान हदीस में हदीस एक है लायक्का अला जहरी लर्द बैत मदरी उला उबरिन इल्ला अथराउल्ला कलमत इस्लाम जमीन पर एक छोट भी घर नहीं बनेगा न छोटा न बड़ा मगर हर घर में अल्लाह कलमा वर्ड ऑफ गॉड दाखिल हो जाएगा यानी दाखिल करना मुमकिन हो जाएगा इसका मतलब है अपने आप नहीं दाखिल होता कोई चीज अपने आप होता तो अल्लाह न भेज जाते नबी न भेज जाते ये जो हदीस है इसका मतलब है कि अपने आप ही दाखिल हो जाएगा वर्ड ऑफ गॉड नहीं वर्ड ऑफ गॉड को हर घर में दाखिल करना मुमकिन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल यह हदीस जो है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल है उसका एक्चुअल बनाना इंसान का काम है उसको वाकई बनाना इंसान का काम है यू हैव टू टर्न दिस पोटेंशियल टू एक्चुअल हदीस ओनली डिस्गाइज द पोटेंशियल Now you have to turn this potential to actual. तो हिस्ट्री आप इंतजार कर रहे हैं जमीन आसमान इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो साबक अनफिनिश्ड मिशन को तकमील तक पहुंचाए यानी पूरे ग्लोब में फैला दें तो दुआ मिशन कोई सादा मिशन नहीं है दुआ मिशन साबक के मिशन को आखिरी हद तक पहुंचाना है पैगंबरों के मिशन को आखिरी हद तक पहुंचाना है जो समझते हैं कि मुसलमानों का प्राइड और मुसलमानों का सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश करने का नाम दुआ मिशन है वो बिलाशुबा कुछ नहीं जानते एक बात मैं यहां आज करना चाहता हूं कि दावा मशन के लिए सिर्फ दो खतरे हैं तीसरा कोई खतरा नहीं दावा मशन वो है जिसके लिए अल्लाह ने वादा किया है कि अपने रुसतों का इफराग करेगा अपने उड़ेल देगा दावा मशन जो है वो मशन है जिस पर अल्लाह का वादा है उस पर अपनी रहमतें अपनी नुसरतें उड़ेल देगा वो कुरान में कई आयतें इस तरह की तो इस एतबार से इस दावा मशन को कोई मसला नहीं है कि हम सोर्सलेस हैं या हम पास सोर्सेस हैं ये कोई मसला नहीं सोर्सलेस होना सोर्सफुल होना ये कोई मसला नहीं है दावा मशन का क्योंकि जब अल्लाह बैकिंग पर हो तो क्या मसला है ये हज़रत बकर और रसूलुल्लाह दो हो गए थे गायसौर में वहां मुशरिक लोग पहुंच गए कत्ल करने के लिए तो हज़रत बकर पर परेशानी चालू हुई आपने फरमाया कि या अब बकर मादन का बिस्तर अल्लाह सालिस हो अबू बकर तुम्हारा उस दो के बारे में क्या गुमान है इसके साथ का तीसरा भी अल्लाह की हो मैं कहूंगा कि तुम्हारा ताई ने दो को इकट्ठा किया दाई और मधु यहां पर दो हैं एक दाई और दूसरा मधु तो मैं यहां कहूंगा कि उन दो के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है जिसका तीसरा अल्लाह हो एक दाई मधु का खतन पाते हैं एक तीसरा भी मौजूद है वहां वो अल्लाह खुद है तो वही وہی بات یہاں صادق آتی ہے, معذر کو پوچھنا اللہ اور صالح سوم, ان دو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟ یعنی اس داری اور بدو کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس کی مدد پر اللہ خود موجود ہو وہاں پر؟ کیسا عجیب یہ وعدہ ہے, کیسا عجیب وعدہ ہے, سمجھیے اس کو, یہ کوئی شاعری نہیں ہے, یہ کوئی آریٹری نہیں ہے, ایک واقعہ ہے. رسول اللہ جو بات وہ کہتے وہاں پہ صرف انڈیویجل کی باتیں تھی, وہ مشن کی بات تھی, یا باپ بکر مادر لوگ کا مشن ہے اللہ اور صالح سما, مطلب یہ مشن ہمارا ہے, کیا کوئی اس کو ختم کر دے گا؟ لغائے سور میں جب آپ تھے, جب دو ہی آدمی تھے وہاں پر, اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ کوئی اس مشن کو ختم کر سکتا ہے؟ جو ہم دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو, مالک کائنات, تو کس کو طاقت ہے کو ختم کرے اس کو؟ تو میں کہوں گا دوبارہ وہی واپس آیا ہے جس دائی اور بدو کے ساتھ کا تیسرا اللہ ہو, تو کیا اس کو مشن کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ سوچنا بھی پاگل پن ہے. اس لیے یہ معاملہ اصل نہیں ہے, اصل بسا دو خطرے کا ہے, دو خطرے ہوتے ہیں ایسے مشن کے, اسی سے آپ کو بچنا ہے. یعنی یہ شک نہ کیجئے کہ ہم دعوی مشن میں کھڑے ہو گئے تو ہم بس سوچ ہے نہیں, ہم سوچلیس لوگ ہیں, یہ سوچنا ہی حرام ہے, یہ سوچنا حرام ہے. وہ لوگ کہاں سوچلیس ہے جو ان کی پشت پر اللہ خود موجود ہو؟ ہم سوچلیس نہیں ہیں, ساری کائنات ہمارا سورس ہے, ساری یونیورس ہمارا سورس ہے, اللہ کے سارے فرشتے ہمارا سورس ہے. اللہ کے سارے فرشتے اس کی پشت پر ہیں, دعوی مشن کی پشت پر. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ سورس لیس ہے؟ صرف دو خطرے ہیں یاد رکھیے دعوی مشن کے لیے, کوئی تیسرا خطرہ نہیں. وہ دو قرآن کے الفاظ میں ہے رکون اور تفرق, قرآن کے الفاظ میں رکون اور تفرق. رابطہ کے وہ الذین ظلموا فتمسکوا النار, یہ رکون ہے. واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, یہ تفرق. تو دعوی مشن کے صرف دو خطرے ہیں, دو ہی ڈینجر ہیں, ڈینجر اس کو سمجھ لیجئے, ایک رکون اور ایک تفرق. رکون کیا ہے؟ رکون ہے ایکسٹرنل انفلوئنس کو, رکون سے مراد ایکسٹرنل انفلوئنس, تفرق سے مراد ہے انٹرنل ڈفرنس. بس ایکسٹرنل انفلوئنس, انٹرنل ڈفرنس, بس یہ دو خطرے ہیں, یہ دو ڈینجر ہیں, تیسرا کوئی بھی نہیں. ایکسٹرنل انفلوئنس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اٹھیں خالص دعوی ورک کے لیے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ ریسپانس کم مل رہا ہے تو آپ اس کو ملنے ورک بنا دیں, اس کو مسلمان کے پرائڈ کو فٹ کرنے لگے, اسلام کو سپریمیسی کا مسئلہ بنا دیں تاکہ لوگوں کو بھیڑ بیٹھا آپ کا دل. یعنی عوام کو سینٹیمنٹ کو اگر فیل کریں گے تو خود بھیڑ اکٹھا ہوگی, جو عوام کے سینٹیمنٹ کو فیل کریں گے تو خود بھیڑ اکٹھا ہوگی, ڈونیشن ملے گا, پیسہ ملے گا, عزت ملے گی, اسٹیج ملے گا, इसी को मैं कह रहा हूं कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को से आप मुतासर हो जाए, वही करने लगे आप, दावा से मिलने मिशन बना दें, दावत बोले, दावत का काम बोले, लग दावत तो बोले लेकिन करें मिली वर्क करें, पैड की बातें करें, सिक्योरिटी की बातें करें, तो खूब लोग खुश होंगे, खूब भीड़ इकट्ठा होगी, दैट इज द गुण, दैट इज एक्सटर्नल रेफरेंस, एक्सटर्नल रेफरेंस के आगे सकम कर जाना। तो एक खतरा यह है कि आप एक्सटर्नल रेफरेंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है उस पर डिस ना करें, सकम कर जाए, वही बोली बोलने लगे जो लोग चाहते हैं कि बोले, आवाम जो बोली चाहते हैं वही बोली आप बोले, लोग प्राइड को फिट करें और ये कहें कि शाम सुपीरियर रिलीजन है तो खूब खुश हो गए लोग, खूब तालियां बजाएंगे, और मिलने वर्क करें आप, जिसको कहते हैं आजकल मुस्लिम एम्पावरमेंट, मुस्लिम एम्पावरमेंट, खूब आपको डोनेशन मिलेगा, ये सब रुकून है, याद रखिए, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के आगे सकम करना है। कुरान में है कि रसूलुल्लाह के बारे बोला तक जरा को खुदा को सिकुंदा, यानी आवाम के आगे आवाम जरा भी छुपाव दे दिखाओ, बोले तू आग पकड़ ली, आग पहले ऊपर से कहा गए, बोला तक क्यों अरे नदी धर्म फतल मस्त कुमार रुकुल को माने टिल्ट, जिसको हम टिल्ट कहते हैं वो है रुकुल, टिल्ट ना दिखाओ, अभी तुम्हें टिल्ट दिखाया तो आग पकड़ लेगी तुमको, उसी टिल्ट को मैं कह रहा हूं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। लोग इस उसमें कि प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, डोनेशन ज्यादा मिलेगा, स्टेज ज्यादा हमारे सजाए जाएंगे, आवाम भीड़ इकट्ठा होगी, इन सब चीजों को देख करके वो टिल्ट करते हैं, ये टिल्ट रुकून है, और रुकून एक बहुत बड़ा गुनाह है, इसी को मैं कह रहा हूं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के आगे सकम करना। इससे आपको बचना है, इससे आपको बचना है, इससे आपको बचना है, क्योंकि बड़ी खतरनाक चीज है। बोले आप तक जरूर मुझसे डॉ टेस्ट न दिखाओ, बोले तुमको आग पकड़ ली, इसके बारे में हदीस बात है कि इस सुलह पर जब ये फॉर्मेट सुरहूद में है, ये सुरहूद जब उतरी तो आप पर बहुत ज्यादा बोझ महसूस होने लगा, ऐसा लगा कि आप कल कबल वक्त बूढ़े हो गए। किस साबी ने पूछा तो आप सैयदी हूद अखबा को सुरहूद में और उस सूरतों में इस तरह के जो हुक्म आया अल्लाह तला का कि स्लाइटेस्ट टिल्ट मत दिखाओ, बोले आग पकड़ लेगी तुमको, स्लाइटेस्ट टिल्ट भी अल्लाह को मंजूर नहीं है, तो रुकून का मतलब यही है कि आवाम के इन्फ्लुएंस को आप से मुतासिर हो जाए, वो बोली बोलने लगे जो लोगों को अच्छी लगती है, जिससे क्राउड इकट्ठा होता है। तो एक बात यह हुई, दूसरी बात है बात बिल्ला जमीन बड़ा तफरक, तफरक का मतलब होता है बिखर जाना, बढ़ जाना, इसी को मैं कह रहा हूं कि इंटरनल डिफरेंस, ये दूसरा खतरा है, इंटरनल डिफरेंस है। देखिए इंसान में, हर इंसान एक स्पेशल क्रिएशन है, हर इंसान के टेस्ट अलग है, सोच अलग है, हर चीज अलग है हर इंसान की। एवरीवन इज मिस्टर स्पेशल, हर आदमी स्पेशल है। सो डिफरेंस इज पार्ट ऑफ नेचर। जब हर आदमी मिस्टर स्पेशल हो, इस मतलब दूसरा यह है कि हर आदमी मिस्टर डिफरेंट है, हर औरत मिस डिफरेंट है, हर मर्द मिस्टर डिफरेंट। तो इख्तलाफ इज बट नेचर, ऐसी हालत में इख्तलाफ तो होने होना। इसलिए डिफरेंस को एक स्कूल बनाना अपने को हलाकत में डाल रहा है। ये इसी के बारे में मैं आपसे कहा करता हूं कि इफ यू हैव अ गुड एक्सक्यूज डोंट यूज इट, इफ यू हैव गुड एक्सक्यूज डोंट यूज इट। क्यों, डिफरेंस तो रहेगा रहेगा, उसके एक्सक्यूज कैसे बना सकते हैं आप। तो दूसरी चीज जो मतलूब है वो ये है कि जिसको मैं कहा करता हूं, इख्तलाफ के बावजूद इत्तेहाद, यानी यूनिटी इन स्पाइट ऑफ डिसयूनिटी। इख्तलाफ के बावजूद इत्तेहाद, डिफरेंस के बावजूद अलग ना होना। अलग होना बहुत दूर की बात है, डिफरेंस के बावजूद शिकायत ना होना, डिफरेंस के बावजूद नफरत ना होना, डिफरेंस के बावजूद बोझ ना होना दिल में। अलग होना बहुत दूर की बात है, अलग होना तो हलाकत है, कत्ल है अपने आप को, सुसाइड है। तो डिफरेंस के बावजूद शिकायत नहीं, डिफरेंस के बावजूद नफरत नहीं, डिफरेंस के बावजूद बहुत अकीना नहीं। अलग होना तो बहुत दूर, वो तो सुसाइड है। तो सुसाइड भी गलत है, प्री सुसाइड गलत है, दोनों। नफरत वगैरह क्या है, ये प्री सुसाइड है, अपने को मार डालना वो सुसाइड है। तो दूसरा जो खतरा है वो ये है, डिफरेंस। रसूलुल्लाह ने एक बार बहुत लंबा सजदा किया, बहुत लंबा सी अनयूजुअल तौर। तो जब उठे आप, तो लोगों ने पूछा कि आपने आज ऐसा सजदा किया जब कभी करते नहीं थे आप, अनयूजुअल तौर, तो क्या बात थी। तो उसने फरमाया कि मैंने अल्लाह से चंद बातें मांगी, सब बात अल्लाह ने मुझे दे दी, एक बात नहीं मिली। जो दुआ फरमाई वो दुआ कबूल होगी, एक कबूल नहीं हुई। वो दुआ ऐसे उम्मत में इख्तलाफ ना हो, लोग डिफरेंस को एक्सक्यूज ना बनाए, मेरी दुआ में यह कबूल नहीं हुई। बिकॉज ये वाज़ अ टेस्ट, क्या टेस्ट को खुदा अबॉलिश कर देगा? ये तो टेस्ट है कि डिफरेंस के बावजूद आप जुड़े रहे, ये तो टेस्ट है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर गॉड टू अवॉइड द टेस्ट, टेस्ट पेपर, ये तो टेस्ट पेपर है। तो ये मतलूब है कि आल ईमान और आल दावत आपस जुड़े रहे, क्योंकि देखिए एक दो आदमी को बड़ा काम नहीं कर सकते, एक दो आदमी कोई बड़ा काम नहीं करते, बड़ा काम करने के लिए टीम चाहिए, टीम। बड़ा काम करने के लिए टीम चाहिए, टीम वर्क चाहिए। बहुत से लोग मिलकर जब काम करते हैं तब बड़ा काम होता है, तो दावा प्रश्न से बड़ा तो कोई काम है नहीं, इससे बड़ा तो कोई काम नहीं है। ग्लोबल पावर वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा टारगेट है, इससे बड़ा कोई टारगेट नहीं। तो ग्लोबल पावर वर्ल्ड जो टारगेट है हमारा, उसकी जरूरत टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क। और टीम वर्क का पॉसिबल है जब लोगों में यह पूता हो कि वो डिफरेंस को एक्सक्यूज न बनाए। सावक होते क्या समझते हैं लोग, आप समझते हैं कि डिफरेंस ऐसा होता था वहां, हर किसी की डिफरेंस वहां मौजूद, हर किसी की डिफरेंस, साहबा और रसूल के दरमियान डिफरेंस था, ये वो समझे कि वहां कोई डिफरेंस नहीं था। साहबा और रसूल के दरमियान बार बार डिफरेंस आया, बार बार, मगर वो डिफरेंस के बहुत जुड़े रहे वो। मसल रसूल के जमाने में गज़वे हुनैन हुआ, उसे माल गनीमत बहुत आया, माल गनीमत, तो आपने उसको ज्यादा दे दिया महाजिर को, अंसार को नहीं दिया, वो लोग जो होते अंसार है, ये इंजस्टिस था ये कि दो ग्रोह थे उसको, दो ग्रुप थे, एक महाजिर अंसार, तो आपने महाजिर को दे दिया, अंसार को नहीं दिया, दैट वाज इंजस्टिस। एक साहबी ने सुना से कह दिया एक अंसारी ने, अंसारी ने बल्लाय मोहदल का बोला कसम आपने इंसाफ नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद जरा भी किसी के अंदर यूनिटी टूटी नहीं, क्योंकि जब सोचा उन्होंने बात को साहबी ने, कोई मसलहत होगी, कोई वजह होगी, खामखा नहीं किया होगा ऐसा, उन्होंने खुद तो नहीं लिया, अपने लिए ले लिया, माहिर को दिया, कहे कहते उसको सोच करके उसको माइनस कर लिया। उस वक्त तो उनके मुंह से निकल गया था, लेकिन बात को सोचा उन्होंने तो माइनस कर लिया उसको कि ठीक है कोई बात होगी, कोई वजह होगी, कोई मसला होगी, तो माइनस करके फिर जुड़े रहे, फिर जुड़े रहे, फिर जुड़े रहे। याद रखिए दो चीजें हैं जो कुछ दावती मिशन के लिए असहतरा है, नुसरत इलाही तो टूटी पड़ेगी उसके ऊपर जो दावत का काम करे, जो दावत के काम के उठे उतना सब सोर्सफुल इंसान है, याद रखिए। लेकिन दो बातें बचना है उसको, रुकून से और तफर्रुख से, यानी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को सकम न करे और डिफरेंस को एक्सक्यूज न बनाए, ये दो चीजें। और ये इस पर काम रखने के लिए कितना बड़ा आपके पास वो है सबब, कितना बड़ा सबब है, एक थ्रिलिंग सबब है। जब भी आप सुबह शाम आप समझेंगे कि मैं उस मिशन को मुकम्मल कर रहा हूं जो साहबा ने शुरू किया था, अभी तक वो अनफुल्ड मुकम्मल नहीं था, वो तो ये आपके लिए फील होगा कि आप डिफरेंस को भूल जाएंगे, शिकायत को भूल जाएंगे, नफरत को भूल जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि इट इज अ थ्रिलिंग आइडिया, देन इज अ थ्रिलिंग आइडिया दैट I am destined, we are destined to finish the unfinished task, unfinished mission of Sahaba. इससे बात को थ्रिल हो सकता है, और कीजिए जिस मिशन पर तमाम अंबिया चले, फिर जिस मिशन को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया, پھر جس مشن کو آگے بڑھایا صاحب اکرام نے, وہ مشن جو ہے ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کیونکہ گلوبل کمیونیکیشن نہیں تھا. اب آج جو لوگ ہیں آج 21st century میں, وہ اس پوزیشن میں ہیں, ان کو یہ موقع ہے. تو یہ سوچنا کہ میں اس صدی میں ہوں جبکہ یہ پاسبل ہو گیا ہے کہ اس مشن کو مکمل کیا جائے, کیا اس سے بات کوئی تھل ہو سکتا ہے؟ ہر چیز بھول جائیں گے, ہر چیز بھول جائیں گے. ایک بار میں ایک فیکٹری میں گیا, وہ فیکٹری چمڑے کی فیکٹری تھی, چمڑا, وہاں بڑی بدبو تھی. وہاں جو مالک تھا وہ اس سے میں پوچھا کہ آپ کیسے رہتے ہیں اس جگہ, میں مسئلہ بیٹھے تھے اس کے اندر, تو اس میں کیسے آپ رہتے ہیں اس میں جاتے ہیں؟ اسے کیا کہا, جب پیسہ آتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے, وہ ایکسپورٹ کرتا تھا, ایکسپورٹ تو کافی پیسہ آتا تھا, لیکن جب پیسہ ملتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے. تو جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم ایک بہت بڑا مشن ہمارا ہے, یعنی نبیوں کے اور صحابہ کے مشن کو آخری تکمیل تک پہنچانا, تو آپ سب کچھ بھول جائیں گے, ڈفرینس بھول جائیں گے, نفرت بھول جائیں گے, شکایت بھول جائیں گے, مصیبت بھول جائیں گے, ہر چیز بھول جائیں گے. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے لکیر کو اگر بڑا ایک بڑی لکیر چھوٹا کرنا ہو تو اسی کے پاس ایک بڑی لکیر کھینچ دو. تو جب آپ کو کوئی ایسی چیز شیطان اٹیک کرے, ایسی کے پاس گرفت ڈالے, تو فوراً آپ یاد کیجیے کہ میں ایک بہت بڑے مشن کو لے کر اٹھا ہوں, ایک بہت بڑے مشن کو مکمل کرنا یہ میرا مقدر ہے, ایک بہت بڑے مشن کو اس کے آخری نشان تک پہنچانا یہ میرے لیے مقدر کیا گیا. یہ سوچتے ہی آپ کو بالکل پھر آئے گا, سب کچھ بھول جائیں گے. تو اس وقت جو ہے دیکھیے, ایک بات اور میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ایج آف کمیونیکیشن پیدا کیا, جو بلا شبہ سے دعوت کے لیے ہے, یہ دعوت کے لیے ہے, اور ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر بہت بڑے پیمانے سیکنگ اسپرٹ پیدا کی, سیکنگ اسپرٹ, وہ تلاش میں ہے. دیکھیے یہ دور جب آیا بہت سے کام سے ہوگی, اس دور میں ماڈرن انڈسٹری آئی, خوب خوب لوگوں نے پیسہ کمایا اور شاندار گھر بنائے, سامان اکٹھا کیے, لیکن اس شاندار گھروں میں پیس نہیں, شاندار فرنیچر کے درمیان ایک ایسا انسان ہے جو ڈسپلے میں جیتا ہے. پھر دیکھیے پینٹنگ پریس آیا, اوپننیس آیا, تو ساری مذہبی کتابیں پڑھی جانے لگی, خوب لوگوں نے کیا, خوب اسٹڈی کیا, تو کسی مذہب پر لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا کیونکہ سب ڈسٹارٹڈ وے میں تھی. تو اس طرح کے ساری چیزوں کو انسان تجربہ کر لیا, ہر طرف اس کو مایوسی. ہمارے ایک ساتھی جو ہیں جو دلی میں رہتے ہیں, تو دلی میں ایک انگریز جوڑا رہتا ہے جو لندن سے یہاں آیا انڈیا, اس نے مطالعہ کیا, تو اس نے کسی نے کتاب میں پڑھا اس نے کہ سب سے بڑی عبادت جو ہے غریب کی خدمت کرنا ہے, غریب کی خدمت کرنا. تو اس نے پتہ کیا, معلوم ہوا کہ غریب لوگ انڈیا میں ہوتے ہیں, वहां से आया यहां पर ताकि वो सबसे बड़ी अहवाल करे गरीबों की खिदमत, यहां उसने आश्रम खोला, लेकिन उसकी रूह को तस्की नहीं मिली। अब जाते हैं इसका सब बात कैसा है मदर टेरेसा का, और उनकी लाइफ में लिखा हुआ शी डाइड इन एगनी, शी डाइड इन एगनी। तो हमारे एक साथी गए उस अंग्रेज को कुरान दिया, कुरान ट्रांसलेशन इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन कुरान, तो वो बैठा हुआ खड़ा हो गया, खड़ा कर लिया उसको, उसने उसने कहा जानते हैं क्या कहा, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू नो द अदर वर्जन ऑफ ट्रूथ, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू नो द अदर वर्जन ऑफ ट्रूथ, यानी मैं चाहता था कोई और भी वर्जन है क्या सच्चाई का, इसके सवाल जो मैंने जाना है, गरीबों की खिदमत करो ये मैं जान था कि एक वर्जन सच्चाई का, उसमें मुझे सुकून नहीं मिला। तो मैं कहूंगा कि ये हर आदमी ये बोल बोल रहा है, जिस पास पैसा है वो भी गरीबत पहन, जिस पास कोई मजहब है वो भी गरीबत पहन, जो आश्रम चाह रहा है वो भी गरीबत पहन, जो पैसा के तरीके से वो रफायाम काम कर रहा हूँ भी गैर मुतमईन, कभी जहां भी कोशिश है गैर मुतमईन। तो हर आदमी की रूह पुकार रही कि क्या कोई दूसरा भी वजन है सच्चाई का, क्योंकि ये तो मुझे मेरे रूह को एड्रेस नहीं करता, न पैसा ने एड्रेस किया उनकी रूह को, न मजहबों ने किया, न वेलफेयर काबू ने किया। तो हर इंसान का मामला यह है कि वो उसकी रूह अनएड्रेस्ड पड़ी हुई, अनएड्रेस्ड, कैसी अजीब बात है कि अल्लाह ताला सबको तजर्बा करवा कर दिखा दिया कि अल्लाह बेज़िक्र अल्लाह तत्वेन क़ुलूब, अल्लाह के सिवा किसी और चीज से तुमको सुकून नहीं मिलेगा। अब सब लोग इस एहसास में जी रहे, सारे इंसान गए के उस हालत में से समुद्र से बाहर मछलियां फेंक दी जाए और हर मछली पानी की तलाश में हो, तो हर इंसान पानी की तलाश में है जो उसको मिला हुआ नहीं, तो हर इंसान की रूह पुकार रही है कि क्या सच्चाई का कोई और वजन है। ऐसी हालत में हर आदमी कुरान को इंतजार कर रहा है। चलो हमारे साथी जाते देते किसी कुरान, तो फौरन अभी हमारे साथी का एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास दिल्ली में, उसने कुरान को सीने से लगा लिया, उस डॉक्टर के पास इसी को चाहता था। तो हर इंसान कहीं ना कहीं गैर मुतमईन है, डिससेटिस्फाइड, वो चाहता है कोई मुझे दे। तो अब कुरान जब उसको मिलता है तो उसकी रूह पुकारती है, उसको पढ़ो शायद यहां तुमको वो जवाब मिल जाए, यहां तुमको वो चीज मिल जाए तुम्हारी रूह एड्रेस हो, तुम्हारा माइंड एड्रेस हो। तो गौर कीजिए कि एक तरफ अल्लाह ने अपने कलाम को महफूज कर दिया कुरान की शक्ल में, फिर अल्लाह ने उसकी एक तारीख बनाई, बहुत ही ऑथेंटिक तारीख, अल्लाह ने एज ऑफ कम्युनिकेशन पैदा किया, ग्लोबल कम्युनिकेशन, पहले इंसानों को सीकर बना दिया, सारे इंसानों को एक तरफ से सब डिससेटिस्फेक्शन पड़े हुए, डिससेटिस्फेक्शन ने सबको सीकर बना दिया। सारा यानी तैयार है माहौल, अब सिर्फ ये कि आप उठे और कुरान को फ्लड कर दे, फ्लड सारी दुनिया तक पहुंचा दे, घर घर पहुंचा दे। अल्लाह के फजल यहां से जो कुरान छपा है सब लोग मानते हैं। अभी हमारे एक मुखालिफ आए थे, हमारे कट्टर मुखालिफ है, उन्होंने कहा ये कुरान जो है इसको मानना पड़ेगा, ऐसा कोई तर्जमा नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हमारा छपा है। एक बुखारी पर कल परसों आया था, वो आदमी जो हमारे मिशन को नहीं मानता, मोर देन 50 ट्रांसलेशन है अंग्रेजी के, लेकिन ये बिल्कुल यूनिकली मुख्तलिफ है। तो मैं अल्लाह ताला दुआ करता हूं कि मुझको और आपको अल्लाह तौफीक दे कि हम इसी मिशन के जिए, इसी मिशन के बने। अकूल कौली हाजा वास्तफुल्ला लिवलकुम अजमाया।
Okay, we will have a very short question answer session. So I request all of you to hand over your questions to Nasreen.
Okay, for the online viewers, we want to tell them that beginning this week, we will start the question answer session. We request them to send in their questions on info@cpsglobal.org. We also request them to mention their location and write the question clearly and in brief. Thank you. Okay, we are starting the question answer session now. मौलाना ये सवाल आया है डॉक्टर मुस्लिमा सिद्दीकी का दिल्ली से। उन्होंने लिखा है, एज फार एज हिज मटीरियल नीड्स आर कंसर्न लाइक हाउस फूड एटसेट्रा मैन डज नॉट रिमेन कंटेंडेड, देन व्हाई इज इट दैट फॉर हिज रिलीजन मैन ब्लाइंडली फॉलोज द प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स पास्ड ऑन बाय हिज एंसेस्टर्स। प्लीज कॉमेंट।
देखिए, रिलीजन जो है आमतौर पर जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन का, बेसिकली वही है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग रिलीजन को एक समझते हैं सेक्रेट चीज, सेक्रेट चीज माने के तो सोचना नहीं, जो है वही बस। हमारे मिशन ने पहली बार थिंकिंग को शामिल किया रिलीजन, वरना थिंकिंग शामिल थी नहीं सैकड़ों साल से। सेक्रेट का मतलब यह है कि सोचे बगैर उसको मान लेना। सोचे बगैर उसको सही मान लेना। सेक्रेट के साथ देखिए सुपरस्टिशन जुड़ा हुआ है, बस जो है वो कोई ठीक है, अपने अकल मत लगाओ। यानी रिलीजन के साथ या सच्चाई के साथ थिंकिंग जोड़ना, ये था ही नहीं सबको साल से, और उसको मिस्टीरियस बनाने में इसका भी दखल है कि जो स्पिरिचुअलिटी थी रूहानियत उसको हार्ड बेस्ड डिसिप्लिन मान लेगा, माइंड बेस्ड नहीं। हम मशीन ने पहली बार एक कहा गया माइंड बेस्ड डिसिप्लिन है, ये हार्ड बेस्ड नहीं है। सो जब हर चीज मिस्टीरियस हो, हर चीज सेक्रेट हो, हर चीज सुपरस्टिशन का गलाब चढ़ाव उसके ऊपर क्यों होगा, जबकि दोनों मामला देखते चारों तरफ जो सोचता है वो ये कर पाता वो कर पाता है। सोचने के फिनोमेना रात दिन देख रहे हैं तू लोग, जिसे सोचा ये कर डाला वो कर डाला। तो मजहब में हम जब तक थिंकिंग को शामिल नहीं करेंगे, माइंड बेस्ड मजहब नहीं बनाएंगे, तो हार्ट बेस्ड से निकाल करके तब तो ये रहेगा। तो मजहब अवाम से ज्यादा जिम्मेदार है वो लोग जिन्होंने मजहब को मजहब एक सेक्रेट चीज बना के रख दिया।
मुंबई से मिस्टर हारून शेख ने सवाल किया है। उन्होंने लिखा है, कैन और शुड बी आस्क डोनेशन एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल फॉर दावा वर्क। प्लीज कॉमेंट।
उसमें देखिए ये मैं बिल्कुल जायज है, रसूलुल्लाह ने प्रश्न मांगा तो इसमें जवाब में कुछ शक नहीं है। मसला सिर्फ एक है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो आदमी हिसाब किताब में, यानी डोनर जो है जब भी चाहे आपका आगे देखा हिसाब तो बिल्कुल वो पाए के जैसा पैसा देगा तो खर्च करेगा। तो मैं देख डोनेशन लेने में कोई नहीं है, मांगने में कोई नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बहुत ही ज्यादा कॉशस हो जाए आदमी, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए आदमी, उसका हिसाब किताब रखेगा एक पैसे का हिसाब जो लोग ऐसा कर सकते हैं। मैंने देख कुल के बिल्कुल जायज वो कोई डोनेशन ले वो, लेकिन जो लोग केयरलेस हो जो ऐसा ना कर सके तो हर किसी वो इसमें इन्वॉल्व ना अपने आप को करें।
ओके, वी रिक्वेस्ट वंस अगेन टू आवर ऑनलाइन व्यूअर्स टू सेंड इन द क्वेश्चंस ऑन info@cpsglobal.org। आई रिपीट info@cpsglobal.org। मौलाना अगला सवाल मिस्टर महबूब ने किया है मुंबई से, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द रोल ऑफ दुआ इन अ दावा प्रोसेस, इज देयर एनी साइन फ्रॉम गॉड व्हेन अ दाई गेट्स हिज हेल्प।
देखिए दुआ तो देखिए हदीस में आता है अदौ उखुल इबादत अदौ होल इबादत, दुआ ही इबादत है। और ये भी है कि ला तरद्दुल कज़ा अला दुआ, यानी अल्लाह का मुकद्दरात को सिर्फ दुआ बदलती है। तो दुआ तो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं एक बात ये कहूंगा कि दुआ किसी का नाम है, दुआ खैरखाही का नाम है दाई के लिए, मधु के लिए बहुत ज्यादा खैरखाही जब बढ़ती है तो जरूर दुआ निकलेगी उसकी दिल से। लेकिन अगर दाव वर्क जो है वो एक बिजनेस हो, एक फॉर्मल चीज हो, एक अनाउंसमेंट हो बस, तब दुआ निकलेगी नहीं, निकलेगी तो लिप सर्विस होगी वो। लेकिन दुआ को अनाउंसमेंट नहीं है, दुआ को बिजनेस नहीं है, दुआ को मिल्ले वर्क भी नहीं है, दुआ पूरे मानों में मधु की खरखाई का नाम है। जब आप खरखा बन जाएंगे आखिर तक तो दुआ तो अपने आप निकलेगी, इसमें तो कोई सवाल नहीं।
मिस्टर साजिद अनवर ने रुड़की से सवाल किया है, उन्होंने लिखा है ड्यूरिंग वन ऑफ द कॉन्वर्सेशन विद समवन I gave the example of the Prophet making the Jews Qibla as his Qibla for Talif-e Kalb. The person replied that now that has been repealed by a Quranic injunction. How it is valid to quote this example as a Prophet Sunnah? Mulana, kindly explain this.
देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आज भी हम उनके Qibla को बनाएंगे। इस सेंस में नहीं, वो एग्जाम्पल है मगर इस सेंस में नहीं। देखिए कुछ एग्जाम्पल होते हैं वही के वही मतलूब होते हैं, कुछ होते हैं इन प्रिंसिपल, उससे प्रिंसिपल रहा होता है। ये एक वाकया है कि रसूलुल्लाह ने तकरीबन 16 महीने तक यहूद के कबला कबला बनाया, एक वाकया साबित है, कुरान से भी साबित है, किताबों से भी साबित है। तो यह तो अब यह साबित है कि ऐसा किया आपने, तो इससे हम यह नहीं निकालेंगे कि आज भी हम उनके कबला कबला बनाए, नहीं, इससे प्रिंसिपल लेंगे। प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्या है, किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं आप पहले मुकल्प के लिए, यह प्रिंसिपल निकला इससे। शायद शराब नहीं पिएंगे, खंजर नहीं खाएंगे, वो तो नहीं कर सकते आप, अदरवाइज आप किसी भी एक्सटेंट पे जा सकते हैं तालीम कल्प के लिए, ये प्रिंसिपल नहीं होता। तो वो वो आदमी जो है उसको पता नहीं, वो समझता है कि वो फॉर्म मतलूब है, फॉर्म नहीं प्रिंसिपल मतलूब है। जो आदमी जो है फर्क नहीं कर जानता इस बात को, डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड प्रिंसिपल। हम कभी यह नहीं कहेंगे कि आज मुसलमानों को यहूदी कबीले को अपने कबीला बनाना चाहिए, हरगिज नहीं, लेकिन उस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। उस प्रिंसिपल को आज के लिहाज से देखा जाएगा उसका अप्लीकेशन कहां है। यानी आज के यहूद या आज के ईसाई या आज के हिंदुओं के लिए तालीम कल्ब क्या है? अब आप अगर कबीला बनाए तो वो तालीम कल्ब दें। मैं पता क्या, एक आश्रम में यहाँ इंडिया के बड़ा आश्रम हिंदुओं का, वहां पक्के शादी थे, मेरे घर में सुल्तान ने हुनैन के बाद पहले कल्प के तौर पर लोगों को भेड़ बकरी दी थी, भेड़ बकरी। वो आश्रम बहुत साफ सुथरा था बिल्कुल। तो मैंने कहा अगर आप यहां भेड़ बकरी लाए तो वो आदमी पहले कल्प नहीं समझेगा उसको, वो मुसीबत समझेगा उसको, प्रॉब्लम। तो भेड़ बकरी उस वक्त जिनको दी थी आपने उनके लिए वो तालीम कल्प था। आ जाए एक साफ सुथरे आश्रम में आप जाए तो वहां पर भेड़ बकरी लेकर के तो कभी आप तो प्रॉब्लम आया हमारे लिए। तो तालीम कल्प एक उसूल है, किसी फॉर्म याद रखिए, किसी फॉर्म का नाम तालीम कल्प नहीं है, कोई भी फॉर्म नहीं, एक प्रिंसिपल का नाम है। आप सोचेंगे तो आप पता जाएगा किसी गिवन सिचुएशन में क्या चीज है जो तालीम कल वो काम करेगी। ये आपको पढ़ाइए।
मिस्टर अबू यूसुफ ने पाकिस्तान से सवाल किया है, उन्होंने लिखा है, कोई प्लॉट जो आदमी को विरासत में मिला है उस पर जकात कैसे वाजिब होगी, इसके बारे में बताएं।
इसके बारे में इस तरह पूछने की जरूरत नहीं है, ये वहीं पर मुफ्ती पूछिए। इस तरह के सवालात जो है बहुत ही सीरियस सवाल होते हैं। हमें नहीं पता क्या प्लॉट है, वो क्या चीज है जिसके बारे में पूछ रहे हैं आप। उस आदमी को जो जवाब दे रहा है उसको जानना चाहिए कि वो क्या चीज है, वो क्या चीज को आप प्लॉट कर रहे हैं, वो क्या है, वो क्या सिचुएशन है। इस वजह से लोकल मुफ्ती जो है, लोकल आलिम से पूछिए आप, कोई आपको सवाल जवाब देगा। मानते हैं इस तरह को अलग मानते हैं। तो इस वक्त जो मैंने बात कही वो मेराज के बारे में नहीं है, इस तरह के बारे में। मेराज को लेकर आप सोचेंगे तो मेरी बात क्लियर नहीं होगी। अब यहां मैं डिटेल नहीं कर सकता, अगर किसी को समझना हो तो मुझसे मिले, बताऊंगा डिटेल इसका।
मिस शालिनी ने दिल्ली से सवाल किया है, उन्होंने लिखा है, व्हेन पीपल्स वर्ल्ड व्यू इज सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर then what efforts can be made to make everyone work towards one mission?
How to unite people?
हाँ मौलाना की क्या efforts करने चाहिए कि एक mission के लिए एकजुट हो जाए सारे, जबकि इतना difference of opinion है, तो क्या efforts होने चाहिए?
क्या फिर पढ़िए?
When people's world view is so different from one another, then what efforts can be made to make everyone work towards one mission?
हाँ देखिए, पहली बात तो ये है कि आप इस बात को डिस्कवर करें कि डिफरेंस इज नॉट एन इविल। ये इज द बिगिनिंग पार्ट। लोग समझते हैं डिफरेंस जो है इविल है, यानी कोई बुराई की चीज है। डिफरेंस बून ब्लेसिंग। क्यों? अगर डिफरेंस ना हो तो आप डिस्कस कैसे करेंगे? डिफरेंस गिव यू अ पार्ट ऑफ डिस्कशन एंड डिस्कशन लीड्स टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। दिस इज द डिवाइन प्लान। डिफरेंस क्रिएट्स डिस्कशन एंड डिस्कशन लीड्स टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यह फॉर्मूला। तो पहली बात यह है कि अगर आदमी यह जान ले कि डिफरेंस कोई बुराई है ही नहीं, वो तो हम एक हमको मौका देता है कि हम उस पर डिस्कस करें और नए नए पॉइंट दरियाफ्त करें, इस तरह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करें। ये अगर लोग जान लें तो डिफरेंस को वो वेलकम करेंगे बजाय के उससे कोई उससे कोई ख्याल पैदा हो।
मौलाना, अभी अभी एक सवाल आया है मिस्टर मोहम्मद जमील कोल्हार का, उन्होंने अपनी लोकेशन नहीं बताई है। उन्होंने सवाल किया है, मौलाना साहब, वी विश टू ओपन इस्लामिक बैंकिंग इन इंडिया टू इरेडिकेट सोशो इकोनॉमिक इम्बैलेंस, कैन वी इनवाइट पोटेंशियल पीपल हुम अल्लाह हैज बिस्टोड वेल्थ टू हेल्प ओपन द इस्लामिक बैंकिंग टू प्रोवाइड एनी असिस्टेंस इन दिस रिगार्ड।
देखिये, मैं इस्लामिक बैंकिंग को रोमांटिक आइडिया समझता, रोमांटिक आइडिया मैं इसको नहीं मानता, ये रोमांटिक आइडिया। इस्लामिक बैंकिंग नथिंग, आप काम करना दाव वर्क कीजिए बस, और कुछ नहीं, और कुछ काम नहीं करना है। आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल हेल्प कीजिए लोगों को, मटेरियल हेल्प नहीं। मटेरियल हेल्प पहुंचाना ये उनका अपना काम, कोशिश करें मेहनत करें बस, लोग छोड़िए मेहनत करें, वो आपको काफी नहीं है। मैं तो फेवर को सबसे बड़ी दुश्मनी समझता हूं, फेवर सबसे बड़ी दुश्मनी करना है इंसान के साथ, चाहे आपकी औलाद हो चाहे आपकी कम्युनिटी हो, उनको फेवर पहुंचाना आप उसका दुश्मनी कर रहे हैं। लेट देम टू हार्ड वर्क, टू वर्क हार्ड, लेट देम टू वर्क हार्ड। आपको काम करना सिर्फ दाव वर्क कीजिए और कोई काम छोड़ दीजिए। इसाइक बैंकिंग बिल्कुल रोमांटिक आइडिया है, वो बिल्कुल कुछ भी अखिलत उसके नहीं है, न इस्लाम है ना बैंकिंग है, इस्लामिक बैंकिंग ना इस्लाम है ना बैंकिंग है, कुछ भी नहीं है। मैं इसको नहीं मानता, इसे आप दाव वर्क कीजिए, हमारे से कलम जीत मंगवाइए और उसको फैलाइए खूब, यही काम है।
मिस्टर नसीम खान ने मुंबई से सवाल किया है, मौलाना वो आपसे दो ट्रेडिशन के बारे में जानना चाहते हैं जो उन्होंने लिखे हैं। फर्स्टली आप इसके बारे में बताएं कि आई फील द ब्रीज कूल एयर फ्रॉम इंडिया, एंड सेकेंडली द लॉन्चिंग ऑफ गजवा इन इंडिया, इन दो ट्रेडिशन के बारे में वो चाहते हैं आप थोड़ा सा बताएं।
दोनों एक ही है, दोनों ही है जी, एक ही ट्रेडिशन है, एक ही हदीस में है वो, तो सहाबा का जिक्र है कि हदीस एक ही है
जी।
ये हदीस आपको मौका देती है कि आप सहाबा के बारे में दोबर ने कहा था, मन सर रहो ये को लोमा फल युवक शर्त लाए दिया, क्या अल्फाज है, मिन हाजिल मिन मनसवे मिन हाजिल उम्मा फली वाले शर्त ला दिया, जो चाहता है इस ब्लेसिंग को हासिल करना कि वो खैर उम्मत बने तो वैसा काम करे वो। तो आप अगर चाहते हैं कि वो ऐसा जो है जिसके लिए हदीस भाई के उनको जहन्नम की आग नहीं छुएगी तो आप वो अमल कीजिए बस, कौन अब किस ग्रुप का भय होता है वो उसको छोड़िए, ये छोड़िए सोचना कि किस ग्रुप का भय, कौन वो ऐसा है कौन नहीं है, उसको अमल कीजिए। वो अमल क्या है, इंडिया में दावती मिशन चला, इंडिया में दावती मिशन चला, और जो इस काम के उठे उसका साथ दे। देखिए हदीस के अल्फाज ये है, ऐसा बताने में उम्मती अर्ज़ा अल्लाह के नाम, Esaabudu Dr. Hind, Esaabudu Dr. Maa Esaabudu Maryam. میرے امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے آگ سے عذاب سے نجات دے دیے. ایک گروہ وہ جو انڈیا میں غزوہ کرے گا, غزوہ دعوتی کیمپین, اور وہ جو مسیح کا ساتھ دے گا. تو دیکھا آپ کو لٹر بانڈ لے لیجیے. آج سوال یہ کہ اس میں کچھ لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے, ان کو جنت ملے گی. وہ کون لوگ ہیں جو دعوتی مشن چلائیں انڈیا میں, اور وہ جو دعوتی مشن کے لیے اٹھنے والے کے ساتھ ہیں. آپ مسیح اور مہدی کے چکر کو پڑھتے ہیں, جس کو آپ دیکھیں کہ دعوتی مشن ہے ساتھ دیجیے اس کا. یہ کیوں چاہتے ہیں کہ اس کی پیشاب لکھا ہوا کہ یہ مہدی ہے یہ مسیح ہے, اس سے کر کو پڑھتے آپ. جس کو دیکھیں کہ وہ دعوتی مشن کو چلا رہا ہے بس ساتھ دیجیے اس کو. یہ اس کی اسپرٹ ہے, اس حدیث کی اسپرٹ. اور جو یہ شکل پڑھتے ہیں کہ کون وہ انسان جس کی پیشاب لکھا ہوا ہو مادی مسیح, تو میں کہتے ہیں کہ وہ بالکل یعنی نادان لوگ. You have to follow the spirit and not the person.
مولانا ابھی ایک اور سوال آیا ہے مسٹر ادریس کا رائے پور سے, جو یہ دیکھ رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا کلیریفیکیشن چاہ رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی ابھی کوشچن آنسر سیشن میں مولانا نے کہا کہ دعا از ناٹ بزنس, دعا از ناٹ ملی ورک, دعا از ناٹ این اناؤنسمنٹ, دعا از خیر
دعا نہیں دعوت کو میں نے کہا بزنس ہے.
جی جی جی
دعا نہیں.
جی جی ٹھیک ہے مولانا.
دعوت کو کہا, دعا کو کہا ہوا میں نے.
جی
دعوت بزنس ہے یہ.
جی اگلا سوال مس نغمہ صدیقی کا ہے.
دعوت بزنس نہیں کا مطلب یہ ہے وہی جو قرآن میں ہے کہ یہود کے بارے میں کہ دین کے نام پر دنیا کمانا, لا تشرو بیات اللہ سمن قلیہ, نام لو دین کا مقصد دنیا کمانا. تو ہم نام لیں دعوت کا اور کام کیا ہو, نیت کا ہو دنیا کمانا. یہ میں کہا بزنس, یعنی دعوت کریں تو بزنس کے لیے, اسٹیج کے لیے, کراؤڈ اکٹھا کرنے کے لیے, فیم کے لیے. اس کو میں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. دعوت ہے صرف اس لیے کہ آپ دوسروں کی خرخائی کے لیے اٹھیں, دوسروں کی ویوشی کے لیے اٹھیں. دعوت جو ہے صرف ایک ہی چیز کا نام ہے ویوشی, باقی کا کوئی اس میں جذبہ شامل ہو جائے, کوئی دنیا میں فائدہ لینا ہو اس سے, تو وہ دعوت نہیں رہے گی, پھر کچھ اور ہو جائے گا.
مس نغمہ صدیقی نے اگلا سوال کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے وی نو ڈفرنسز should not be made excuses, but how can we stay positive in spite of negativity arising out of differences between team members?
یہ تو بہت ہی آسان ہے. Take it as an opportunity. دیکھیے یہ بہت ہی اس میں ریوارڈ ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے کوئی کام کرے, نہ چاہتے ہوئے کوئی کام کرے, بہت ہی بڑا سوال. قرآن میں ہے کہ اللہ حب پہ ہی, یعنی مال کو دینا اللہ کے لیے جبکہ آپ کی بات محبوب ہوتا ہو دینا نہیں چاہتے آپ, یعنی مال کو چاہتے رکھنا اپنے پاس, پھر بھی یہ سوچ کر کے اللہ کے کام کو ضرورت ہے مال کی تو آپ کو دے دیتے. تو جس وقت ڈفرنس آ جائے, شکایت پیدا ہو جائے, پھر بھی پیشنٹ کی خاطر, اللہ کی خاطر آپ اس کو انفیکٹو بنا دیں, تو بہت ہی بڑا ثواب ہے. تو آپ کی نظر اس ثواب پہ ہونی چاہیے. ना आपके दिल की हालत पर, कि ये तो मौका है, तो अपॉर्चुनिटी है कि मैं अल्लाह से उसका बहुत बड़ा रिवार्ड ले सकूं। तो उस वक्त आप अगर ये आपके जहन में आ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा।
अगला सवाल चेन्नई से मौलाना इकबाल उमरी का है। उन्होंने लिखा है, मौलाना इल्मी या फिक्री तस्किये में मुखलिस होने की पहचान क्या है?
तजिया।
इल्मी या फिक्री तजिया में मुखलिस होने की पहचान क्या है?
तजिया करने में मुखलिस होने की पहचान क्या है?
किसी
इल्मी और फिक्री मामले में तजिया करने में मुखलिस होने की पहचान
तजिया।
वो कह रहे हैं मानो कि कोई शख्स किसी मामले में इल्मी और फिक्री तज़िया करता है तो उसके मुखलिस होने की पहचान क्या है?
देखिए, मुखलिस का मामला जो है वो कोई ऑब्जेक्टिव साइन उसका नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है। ये चीज सब्जेक्टिव है, हम बाहर से देख कर नहीं कर सकते कि आदमी मुखलिस है नहीं मुखलिस है। आदमी खुद अपना मुहासबा करे, अपना इंट्रोस्पेक्शन करे और ये सोचे कि जो वो तजिया कर रहा है किसी पर, जो तनकीद कर रहा है, तो वाकई वो अल्लाह के लिए कर रहा है या अपने नफ्स के लिए कर रहा है। मसलन देखे, एक चीज है कहते हैं फितने मुआसरत, तो जो आप कंटेम्प्रेरी हो उसको आप चाहते हैं डाउन करना, आप चाहते हैं किसी से साबित करें कि गलत है। तो एक है कि आपका जो अंदर का जो इंटेंशन है वो ये है कि दूसरे को डाउन करूं मैं, दूसरा ऊपर नोट नहीं पाए, मैं सही रहूं, दूसरा जो है वो मुझसे आगे ना बढ़ पाए। तो ये आदमी खुद जान सकता है या अल्लाह जान सकता है, कोई ऑब्जेक्टिव साइंस के लिए नहीं। आदमी को बहुत टटोलना चाहिए, बहुत टटोलना चाहिए। क्यों? देखिए, अगर आप दूसरे का तजिया करते हैं, दूसरे तनकीद करते हैं किसी बुरे नियत से, तो बहुत खतरनाक बात है। ये तो जानने की बात, जानने में आप डरना चाहिए। अगर तजिया और तनकीद नसीहत के लिए है, सचमुच खरखाई के लिए, तो बहुत बड़ा सवाब उसके लिए। लेकिन अगर तजिया और तनकीद दूसरे को डाउन करने के लिए है तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो हम बाहर से सिर्फ उसको ये कह सकते हैं कि कुरान हदीस पर कुछ जांचे, यानी लॉजिक पर जांचे उसको, हम इतने कर सकते हैं। इसके आगे जो है वो इंसान का अपना काम है। खुद आदमी जान सकता है कि मेरा जो तजिया है, तनकीद है, वो सचमुच अखलाक पर अपनी है कि नहीं। यानी खाजी तो वे बख्स कर सकते हैं, लेकिन आप हक नहीं है कि आप उसको हुक्म लगा, हुक्म नहीं लगा सकता। कम से कम एक पहचान बता सकता हूं, एक पहचान। वो पहचान ये है कि एक आदमी ने एक बात कही, बात कहते हुए बख्स होता हो, लेकिन जब आपने जवाबी दलील से रद्द कर दिया उसको कुरान हदीस से, फिर भी वो हटा दे उससे, तो बिलाशुबा वो गैर मुखलिस साबित किया उसने अपने आप को। एक आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया कुरान हदीस को लेकर के, आपने उसको पढ़ा, आपने कुरान हदीस से जांचा उसको, और फिर आपने उसके जवाब में दलील की जुबान में दलील रद्द कर दिया उसको, बिल्कुल 2-4 के रद्द कर दिया, फिर भी वो यानी अपने आप को वो उसका हजरतुल इज्जत बिलिस्म का नमूना बन जाए और मानने को तैयार ना हो, तो جب آدمی آئی باز رانگ نہ کر سکے تو وہ غیر مخلص ہے. دلیل کے سامنے آنے کے بعد بھی وہ انسسٹ کرے تو وہ غیر مخلص ہے. دیکھیے آدمی کسی رائے کو قائم کرنے میں غلطی کر سکتا ہے, لیکن جب دلیل رد کر دیا جائے اسے اس کو اور پھر بھی وہ نہ ہٹے اس سے, تب وہ مخلص نہیں مانا جائے گا. اس بات کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے. ایک غلط رائے قائم کرنے میں ایک آدمی مخلص ہو سکتا ہے, لیکن جب اس غلط رائے کو دلیل سے رد کر دیا جائے اس کے باوجود وہ نہ ہٹے اس سے, تو پھر وہ غیر مخلص نہیں ہو, پھر اس کا غیر مخلص ہوگا.
مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا اضافے ایمان کو ترقی کس طرح دیں, اس کے بارے میں بتائیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تدبر تفکر اس سے ہوتا ہے, کوئی مسٹیریس طریقہ نہیں ہے اس کا. جتنا آپ سوچیں گے اتنے ہی آپ کے اندر ایمان بڑھے گا. کوئی مسٹیریس طریقہ مجھے نوال اس کا کیا آپ بتا رہے ہیں. اسٹڈی کیجئے, تدبر کیجئے, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ ہے.
Okay, we will end the session now. Once again, I'll just make the announcement that anybody who wants to volunteer for the Dawa Field team in Delhi NCR, he can contact Mr. Khurram Qureshi, who is standing here, after the session is over, after the namaz. Thank you.